पाठ 34 अध्याय 37 और 38।
पिछले सप्ताह हमने उत्पत्ति 37 में अभी अभी प्रवेश किया है। हालांकि ऐसा करने से पहले हमने अध्याय 36 में याकूब के जुड़वां भाई एसाव की वंशावली पर कुछ गहराई से विचार किया और हमने सीखा कि एसाव के वंशजों ने इश्माएल के वंशजों के साथ बड़े पैमाने पर विवाह किया, जिसका अर्थ है कि आज मध्य पूर्व के अधिकांश लोगों की नसों में इश्माएल और एसाव के खून का कुछ मिश्रण है। हालांकि हमारे लिए वैज्ञानिक और तर्कसंगत आंखों से देखना और यह कहना मुश्किल हो सकता है कि यह लगभग एक स्वाभाविक परिणाम है कि कुलपिता के दो बेदखल बेटों इश्माएल और एसाव के वंशज कुलपिता के चुने हुए और धन्य बेटों इसहाक और याकूब के वंशजों के लगातार विरोध में रहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि वास्तव में ऐसा ही हुआ है। इश्माएल और इसाफ के वे आधुनिक वंशज याकूब इज़राइल के आधुनिक लोगों के लिए एक ऐसी नफरत रखते हैं जो मूल रूप से ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दोनों है।
उत्पत्ति 27 का 38, एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरा एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझे भी आशीर्वाद दे। तब एसाव ऊंचे स्वर में रोने लगा। स्टेक। तब उसके पिता इसहाक ने उत्तर दिया, सुन, तेरा निवास भूमि की उपजाऊ भूमि से दूर और आकाश की ओस से दूर रहेगा 40, और तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहेगा और अपने भाई की सेवा करेगा, परंतु जब तू बेचैन हो जाएगा तब तू उसका जुआ अपनी गर्दन से तोड़ डालेगा। अंतिम पद पर ध्यान दें, परंतु जब तू ऐसा बेचैन हो जाएगा तब तू उसका जुआ अपनी गर्दन से तोड़ डालेगा। ये वही है जो हमारी आंखों के सामने चल रहा है, दिन ब दिन हमारे टीवी पर दिखाया जा रहा है। एसाव फिलिस्तीनी बेचैन हैं, वे इसराइल के जुए के नीचे नहीं रहना चाहते जिस तरह से वे खुद को देखते हैं, और वे अपनी गर्दन से उस जुए को तोड़ने और अपना खुद का संप्रभु राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में हैं, और वे सफल होंगे कुछ समय के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले पाठों में बताया है, आज मध्य पूर्व में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर द्वारा इसहाक और इश्माएल के बीच विभाजन, चुनाव और अलगाव का परिणाम है, और फिर एसाव और याकूब के बीच, और यह उन भविष्यवाणियों के आशीर्वाद का भी परिणाम है जो 3500 साल पहले और उससे भी पहले हुए थे, और शांति प्रस्ताव और संयुक्त राष्ट्र परिषदों और संधियों और प्रस्तावों की कोई भी मात्रा इसे सुखद अंत तक नहीं ला पाएगी। देखिए, परमेश्वर की योजना यह नहीं है कि वह लोगों को इसे हल करने का मौका देगा, और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो वह हस्तक्षेप करेगा। हालांकि वास्तव में यह कुछ पूरी तरह से भ्रमित संप्रदायों का धर्मशास्त्र है। यह तभी संभव होगा जब परमेश्वर हस्तक्षेप करेंगे। कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे कहा कि अगर यह सच है कि मध्य पूर्व में जो कुछ हो रहा है यह अवश्य होना चाहिए तथा शांति की एकमात्र आशा मानव निर्मित नहीं है बल्कि पूरी तरह से हमारे मसीहा की वापसी पर निर्भर है, फिर हमें इसराइल का पक्ष क्यों लेना चाहिए और फिलिस्तीनियों या यहूदियों के खिलाफ क्यों होना चाहिए? मुसलमान या ईरान या जो भी इसराइल को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, हमें जिज्ञासा के अलावा जो कुछ भी हो रहा है उस पर इतना ध्यान क्यों देना चाहिए? क्योंकि यह सब तो वैसे भी होने वाला है।
खैर, उस व्यक्ति की बात सही थी। यीशु ने खुद कहा था कि अंत नहीं आएगा और वह तब तक वापस नहीं आएगा जब तक कि वह सब कुछ नहीं हो जाता जो होना चाहिए। तो यीशु के अनुयायियों के रूप में इस सब में हमारी क्या भूमिका है? एक तरह से यह हमारे लिए परीक्षा का समय है। ईश्वर पक्ष चुनता है क्योंकि वह विभाजन बनाता है जो पक्ष बनाता है, और वह मांग करता है कि सभी मानव जाति एक पक्ष या दूसरे को चुने। क्या हम यीशु के पक्ष में हैं या उसके खिलाफ? यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है। विश्वासियों के रूप में हमें ईश्वर और उनके वचन पर भरोसा करने के लिए कहा जाता है।
लेकिन हमारा चुनाव यीशु के साथ ही समाप्त नहीं होता। हमारे लिए अगला सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक चुनाव यह है कि हम इसराइल और उसके लोगों यहूदियों के मामले में किस स्थिति में हैं। यहोवा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग इसराइल भूमि और लोगों को आशीर्वाद देंगे वे धन्य होंगे, और जो इसराइल को शाप देंगे वे शापित होंगे। ईश्वर तटस्थता को बर्दाश्त नहीं करता। यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम गर्म या ठंडे हो, लेकिन तुम गुनगुने हो, इसलिए मैं तुम्हें उगलने पर हूं। हमें बस पवित्र शास्त्रों को पढ़ना है ताकि पता चल सके कि हमसे क्या चुनाव अपेक्षित है। फिर भी जैसे मूसा ने इसराइल को आदेश दिया था कि अपने रिश्तेदारों एसाव से घृणा न करें, हमें उन लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिए जो इसराइल के खिलाफ है। इसराइल का पक्ष लेने के लिए हमें मुसलमानों और फिलिस्तीनी लोगों से घृणा करने की जरूरत नहीं है। खैर, जैसे जैसे कुलपिताओं का युग समाप्त होता है, अध्याय 37 हमें याकूब के 11वें पुत्र यूसुफ से परिचित कराता है, और यूसुफ वहीं से शुरू करता है जहां कुलपिताओं ने छोड़ा था। यूसुफ उत्पत्ति के शेष भाग का केंद्र बिंदु होगा। आइए उत्पत्ति 37 को शुरू से पढ़ें। उत्पत्ति 37 पूरा पढ़ें। पद 2 में हमें बताया गया है कि 17 वर्षीय यूसुफ अपने कुछ भाइयों के बारे में बुरी खबर लेकर आता है और अपने पिता को देता है। दूसरे शब्दों में उसने उनके बारे में बातचीत की। क्या यहां किसी के पास कोई छोटा भाई या बहन है जो मां और पिताजी को बताने के लिए, कुछ खोजने के लिए बेताब है? खैर, यहां यही स्थिति है। एक और बात पर ध्यान दें, ये विशेष भाई जिनके बारे में बातचीत की गई थी, वे याकूब की वैध पत्नियों लिया और राहिल के बेटे नहीं थे। वे याकूब की 2 रखेलों बिलाह और जिल्पा के बेटे थे। इससे याकूब के सभी बेटों के बीच संबंधों पर अतिरिक्त तनाव और तनाव पैदा हो सकता था, जो 4 अलग अलग महिलाओं से पैदा हुए थे। इस परिवार में समस्याओं की कल्पना करें।
लेकिन इब्रानी में परिवार की स्थिति में एक सूक्ष्म परिवर्तन भी दिखाई देता है, क्योंकि पहली बार बिलाह और जिल्पा याकूब की रखेलें अब शीशाह कहलाती हैं, जो कि एक ऐसा शब्द है जो आम तौर पर केवल एक वैध पत्नी के लिए ही लागू होता है। अब मैं इसे 100% निश्चितता के साथ नहीं कह सकता, लेकिन जब तक कि यह एक संपादन या विसंगति न हो, ऐसा प्रतीत होता है कि याकूब ने बिलाह और जिल्पा को हमेशा के लिए पत्नियां बनाया है। रामबाम मैमोनाइट्स कहते हैं कि यूसुफ की इस कहानी के समय लिया और राहेल दोनों ही मर चुकी थी। अगर यह सही है, और यह अधिक संभावना है कि ऐसा नहीं है, तो हम समझते हैं कि याकूब ने बिलाह और जिल्पा की स्थिति को क्यों ऊंचा किया होगा, और हम यह भी समझते हैं कि इस समय याकूब के परिवार में कितनी भयानक उथल पुथल थी।
अब क्योंकि याकूब ने हमेशा राहेल का पक्ष लिया था, इसलिए उसने राहेल द्वारा दिए गए 2 बच्चों यूसुफ और बिन्यामीन का भी पक्ष लिया, और विशेष रूप से यूसुफ का। हमें पद 3 में बताया गया है कि याकूब यूसुफ से प्यार करता था, और जाहिर है उन्होंने इस तथ्य को बहुत स्पष्ट करने में कोई संकोच नहीं किया, और उन्होंने यूसुफ के पक्ष को और भी अधिक दर्शाते हुए उसे वह दिया जिसे अधिकांश बाइबल कई रंगों का कोट कहेंगी। दरअसल यह कोई कोट नहीं था, बल्कि एक अंगरखा था, इब्रानी में केटोनेट पासिम। लेकिन अंगरखे कई तरह के होते हैं, जो साधारण से लेकर खास तक होते हैं। इससे भी बढ़कर एक अंगरखा था जो गर्दन से टांगे तक और हाथों की कलाई तक जाता था। यह एक शाही अंगरखा था, और यहां इस्तेमाल की गई इब्रानी भाषा का रूप कहता है कि वास्तव में यह एक शाही वस्त्र था। अब कल्पना कीजिए, ऐसा नहीं था कि यूसुफ को अपने भाइयों की तुलना में एक अच्छा कोट मिला था। यह था कि उसके पिता ने उसे वस्तुतः एक राजकुमार के रूप में अभिषिक्त किया था, और उसे उस राजसी पोशाक में अपने भाइयों के बीच घूमने के लिए कहा था। इससे जो ईर्ष्या और जलन पैदा होने वाली थी, वह यूसुफ की जान लेने वाली थी। वास्तव में ईर्ष्या यूसुफ के प्रति घृणा में बदल गई, जैसा कि पद 4 में कहा गया है कि उसके भाई उसे दोस्ताना या सभ्य शब्दों में बात नहीं कर सकते थे। यूसुफ के प्रति अपने जुनूनी वरीयता में याकूब के कार्यों ने यूसुफ को उसके भाइयों के साथ फिट नहीं होने दिया। शाब्दिक रूप से इसका अनुवाद है, वे खुद को उससे शांति के लिए संबोधित करने के लिए तैयार नहीं कर सके। आज मध्य पूर्व में भी ऐसा ही है। उस समय आम अभिवादन शांति तुम्हारे साथ हो था। यह पद जो कह रही है
वह यह है कि ये भाई खुद को यूसुफ को मानक शांति तुम्हारे साथ हो अभिवादन देने के लिए भी नहीं ला सके, क्योंकि वे उससे बहुत घृणा करते थे। यह इस संदर्भ में है कि हमें यह देखना चाहिए कि क्या होने वाला है।
किसी तरह से यूसुफ अपने चारों ओर फैले इस क्रोध और घृणा से कुछ हद तक अलग था, और युवावस्था के भोलापन में यूसुफ में इतनी भी समझदारी नहीं थी कि वह उस अवसर पर अपना मुंह बंद रखे जब उसने एक ऐसा स्वप्न देखा था जिसका अर्थ उसके लिए तो रोमांचक था परंतु उसके भाइयों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इस सपने में वह किसी तरह के कटे हुए अनाज के पूले गट्टर देखता है। इनमें से 12 पूले थे और उनमें से 11 12वें के सामने झुक रहे थे। अब इस किशोर यूसुफ की कल्पना करें जो अपने शाही अंगरखे में खरा है, अपने आप में मस्त है, अपने 10 बड़े
भाइयों को यह कहानी बता रहा है, जो इस सपने के प्रतीकवाद को अच्छी तरह से जानते थे कि वे सभी एक दिन यूसुफ को अपना स्वामी मानकर उसके अधीन हो जाएंगे।
यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर यूसुफ से सपनों और दर्शनों में कैसे संवाद करेगा, जो कि कुलपतियों के साथ उसकी अधिक प्रत्यक्ष श्रव्य यहां तक कि दोतरफा बातचीत के विपरीत है। लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है कि यह यूसुफ के लिए अद्वितीय नहीं था। सपने और दर्शन मानक तरीके थे जिनसे उस युग के लोग सोचते थे कि उनके परमेश्वर या देवता उनसे संवाद करते हैं, और लोग आम तौर पर इन भविष्य सूचक दर्शनों पर विश्वास करते थे। लेकिन यह भी समझा जाता था कि सपने देखने वाले के व्यक्तित्व और महत्वाकांक्षाओं ने भी सपने में एक भूमिका निभाई थी। इसलिए एक सपना एक तरह की शंकर चीज थी, ये एक आकाशवाणी या भविष्यवाणी थी जो आंशिक रूप से परमेश्वर और आंशिक रूप से सपना देखने वाले व्यक्ति की आकांक्षाएं थी। पद 9 में उसे एक और सपना आता है और एक बार फिर वह सबको बताने के लिए बेताब है। पहला सपना उसने सिर्फ अपने भाइयों को बताया था, यह सपना वह अपने पिता याकूब से भी बताता है। अब वह कहता है कि सूरज चांद और 11 सितारे उसके सामने झुके। वे फिर से अच्छी तरह जानते थे कि इसका क्या मतलब है, लेकिन यह और भी अपमानजनक था क्योंकि उस युग में और वास्तव में हमारे समय के मूर्ति पूजक धर्मों तक सूरज पिता का प्रतिनिधित्व करता था और चांद मां का और सितारे उनकी संतान। तो अब यूसुफ कह रहा था कि न केवल उसके भाई उसके सामने झुकेंगे बल्कि उसके अपने माता और पिता भी उसके सामने झुकेंगे। याकूब यूसुफ के आत्म महत्व को थोड़ा कम करने की कोशिश करता है, उसका मजाक उड़ाते हुए, और कहता है क्या हम आएंगे मैं और तुम्हारी माँ और तेरे सामने जमीन पर गिरकर दंडवत करूंगे। अब उसके पूरे परिवार ने सोचा होगा कि यूसुफ अपना आपा खो रहा है और महानता के भ्रम से ग्रस्त है। वास्तव में यह पता चलेगा कि यह सपने सटीक थे। इसके अलावा वह स्वप्न व्याख्या यूसुफ के लिए परमेश्वर की ओर से एक आध्यात्मिक उपहार था। वैसे यह अंश इस बात को पुष्ट करता है कि बिलाह और जिल्पा याकूब की पत्नियां बनी थी, क्योंकि हालांकि राहेल इस घटना से बहुत पहले मर चुकी थी, यहां हम याकूब को यह कहते हुए जवाब देते हैं, तो तुम कहती हो कि मुझे और तुम्हारी मां को तेरे सामने झुकना चाहिए। राहेल यूसुफ की मां थी लेकिन बिलाह उसकी दासी थी। बिला का यूसुफ के पालन पोषण में बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। अगर याकूब ने बिला का दर्जा पूर्ण पत्नी के रूप में बढ़ाया होता तो उस युग में उसे यूसुफ की मां के रूप में संदर्भित करना प्रथागत होता। जाहिर है कि इस समय इसराइली कबीले के झुंड शेकेम के आसपास के घास के मैदानों और घाटियों में चर रहे थे, जबकि घर का आधार हेब्रोन में था और यूसुफ के भाई जानवरों की देखभाल कर रहे थे। मुझे यह दिलचस्प लगता है कि याकूब और उसके बेटों को शेफेम वापस जाने में कोई पछतावा नहीं हुआ, ये देखते हुए कि कुछ साल पहले ही शेखेम के राजा के बेटे ने याकूब की बेटी दीना के साथ कुकर्म किया था और बदले में याकूब के बेटों ने उस शहर के हर पुरुष निवासी को मार डाला था और उनकी कई विधवाओं और बच्चों को अपने लिए ले लिया था। इसराइल याकूब ने यूसुफ से कहा कि वह अपने भाइयों के पास जाए और उनका हालचाल पूछे। याकूब के यूसुफ को भेजने का कारण यह हो सकता है कि वह उस भयानक घटना के मद्देनजर अपने बेटों के लिए चिंतित था। मध्य पूर्व में प्रतिशोध की इच्छा पीढ़ियों तक चल सकती है। यूसुफ अपनी खतरनाक स्थिति से अनजान होकर वहां से चला जाता है। यह लगभग 50 मील की यात्रा थी और जब वह शेखेम के पास पहुंचता है तो एक आदमी उसे बताता है कि झुंड वहां था लेकिन डोतान नामक स्थान पर चला गया। दो बातें, पहली, कुछ फिल्मी संस्करणों के विपरीत होने के बावजूद यह आदमी सिर्फ एक आदमी था, इस्तेमाल किया गया इब्रानी शब्द इश एक आदमी था, तो यह कोई स्वर्गदूत नहीं था। दूसरी बात, डोतान नामक स्थान का अर्थ है दो कुएं और यूसुफ उन कुओं में से एक के साथ नजदीकी सामना करने वाला था। दोनों कुओं का क्षेत्र पहाड़ी और हरा भरा था और जाहिर है कि उन पहाड़ियों में से एक के ऊपर एक सुविधाजनक स्थान से भाइयों ने यूसुफ को अपनी ओर आते देखा। अब उनकी नफरत चरम पर थी। प्यारे बूढ़े पिता कम से कम 3 दिन की यात्रा से दूर थे और यूसुफ के उनके पास पहुंचने से पहले ही उन्होंने उसे मार डालने का फैसला कर लिया था। पद 19 और 20 हमें स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या था जिसने उन्हें चरम पर पहुंचा दिया। यह यूसुफ के वे सपने थे जिन्होंने उन्हें हत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। आइए स्पष्ट करें, यह केवल ईर्ष्या और अपमान के बारे में नहीं है। इन भाइयों का मानना था कुछ हद तक कि यूसुफ के स्वामी होने के सपने सच थे। अगर उन्होंने यूसुफ को मार दिया तो समस्या हल हो जाएगी। अब रूबेन, जो याकूब का पहिलौठों का और लियाह का पुत्र था, ने हस्तक्षेप किया और सुझाव दिया कि वे यूसुफ को अपने हाथों से न मारें, बल्कि उन्हें उसे एक गड्ढे में फेंक देना चाहिए, इस विचार के साथ कि यूसुफ उस गड्ढे में भूख से मर जाएगा और कभी नहीं मिलेगा। अब बाइबल हमें बताती है कि रूबेन का असली इरादा यूसुफ को मरवाना नहीं था, बल्कि भाइयों के क्षेत्र से चले जाने के बाद वापस आकर उसे वापस लाना था। आइए यहां याद रखें कि रूबेन याकूब का पहिलौठों का वह था जिसने बिलाह के साथ सोकर अपने पिता के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश की थी। इस तरह उसने अपने पिता की रखेल को पुरस्कार के रूप में हासिल कर लिया था, हालांकि तख्ता पलट विफल हो गया। और जाहिर तौर पर राहेल और लिया दोनों के मरने के बाद याकूब ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि बिलाह को परंपरा के अनुसार बर्बाद माना जाता था और फिर भी उसे शादी कर ली। स्पष्ट रूप से रूबेन को अभी भी अपने भाइयों में से सबसे बड़ा बेटा माना जाता था। इसलिए यह दिलचस्प है कि रूबेन, जो अपने पिता की यूसुफ के लिए विशेष पसंद के कारण सबसे अधिक नुकसान में था, वह वही होगा जिसने हस्तक्षेप करने और यूसुफ के बचाव में आने की कोशिश की। इसके अलावा सबसे बड़े भाई के रूप में रूबेन को समूह के कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया होगा और बिलाह मामले के कारण वह पहले से ही काफी मुश्किल में थी। यहां यह जानना दिलचस्प होगा कि वह गड्ढा वास्तव में एक खाली कुआं था, एक तालाब। याद रखें, जिस जगह पर वे थे उसका नाम डोतान था। दो कुएं थे और जाहिर तौर पर उन दो कुओं में से एक सूखा था, जैसा कि हमें पद 24 में बताया गया है। उस समय सूखे कुओं और कुंडों का इस्तेमाल आम तौर पर जेल की कोठरियों, यहां तक कि छिपने की जगहों के रूप में किया जाता था। इसीलिए रूबेन का विचार बिल्कुल भी नया नहीं था।
कुछ अध्याय पहले हमें इन भाइयों के बारे में अच्छी तरह से पता चला कि वे कितने कठोर व्यक्ति थे, जिन्होंने शेखेम के सभी पुरुषों को मार डाला था जब पुरुषों को खतना करवाने के लिए धोखा दिया गया था, और इसके दुष्परिणामों से वे कमजोर हो गए थे। फिर वे असहाय शहर को लूटने के लिए उत्पात मचाने लगे, यहां तक कि अपने परिवार को बढ़ाने के लिए इसकी कुछ महिलाओं और बच्चों को भी ले गए। इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि ये वही निर्दयी पुरुष अपने किशोर भाई को मरने के लिए एक खाली कुएं में फेंक देंगे और फिर तुरंत दोपहर का भोजन करने बैठ जाएंगे, जबकि उसकी दया की याचना हवा में लटकी रहेगी।
जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, उन्हें इश्माएली अरब व्यापारियों का एक कारवां दिखाई दिया। इस पर लियाह के दूसरे बेटे यहूदा के दिमाग में एक विचार आया, चलो उसे गड्ढे में मरने न दें, चलो उसे अरबों को बेच दें, इस तरह उसके साथ जो कुछ भी होगा वह उनके नियंत्रण से बाहर होगा। क्या यह एक अनावश्यक तर्क है? इसके अलावा वे वास्तव में इस तरह से यूसुफ से छुटकारा पाकर आर्थिक रूप से लाभ कमा सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए?
संयोग से यह सोचना कि इन व्यापारियों का कहीं बीच में आना एक बहुत
बड़ा संयोग होगा बिल्कुल भी दूर की बात नहीं है, क्योंकि मध्य पूर्व के सबसे पुराने व्यापारिक मार्गों में से एक गिलियड के मसाला उत्पादक क्षेत्र से शुरू होकर शेखेम, जहां वे स्थित थे, के क्षेत्र से होते हुए मिस्र तक जाता था।
इसलिए भाइयों ने यूसुफ को व्यापारियों को 20 शेकेल चांदी में बेच दिया, जो एक पुरुष दास के लिए प्रचलित दर थी। रूबेन वापस लौटा तो उसने पाया कि यूसुफ वहां से चला गया है, तो उसने अपने वस्त्र फाड़ ढे और शोक में पड़ गया। अब यह इतना नहीं था कि वह यूसुफ के चले जाने पर विलाप कर रहा था, बल्कि सबसे बड्ढे होने के नाते उसे उसके पिता याकूब द्वारा जिम्मेदार ठहराया जाएगा। भाइयों ने अब उस शाही अंगरखे पर खून लगाया जिसे उन्होंने यूसुफ से कुएं में फेंकने से पहले छीन लिया था, और इसे अपने पिता के पास ले गए और पूछा, क्या यह यूसुफ का अंगरखा है? बेशक याकूब ने तुरंत अंगरखा को यूसुफ का अंगरखा पहचान लिया। अंगरखे पर लगा खून याकूब के लिए इस बात का पर्याप्त सबूत था कि एक जंगली जानवर ने यूसुफ को मार डाला और खा गया। इस तरह भाइयों को अपना झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इसके बजाय उन्होंने अपने पिता को सांत्वना दी, लेकिन याकूब को सांत्वना नहीं मिली, और उसने हमें थोड़ा संकेत दिया कि उसके समय के लोग मृत्यु को किस तरह देखते थे। उसने बयानबाजी करते हुए कहा कि निश्चित रूप से अब वह मर जाएगा और फिर अपने बेटे यूसुफ के साथ रहने के लिए अधोलोक में चला जाएगा। उस समय अधोलोक का मतलब मूल रूप से कब्र या मृतकों का स्थान था। मरने और स्वर्ग जाने की अवधारणा अस्तित्व में नहीं थी। जैसा कि हमने हाल के अध्यायों में देखा है, मरने और अपने लोगों के पास एकत्र होने की अवधारणा है, जो पूर्वजों की पूजा को लगभग सार्वभौमिक अभ्यास से जुड़ा हुआ है। इन प्राचीन लोगों के दिमाग में इसका क्या मतलब था, यह अनिश्चित है, लेकिन निश्चित रूप से यह मृत्यु के बाद किसी प्रकार के जीवन का विचार लेकर आता है, भले ही उन्हें यह स्पष्ट नहीं था कि इसका क्या मतलब है। इस अध्याय के बारे में एक छोटी सी बात जो हमें थोड़ी परेशानी देती है, इसमें बारी बारी से कहा गया है कि भाइयों ने यूसुफ को इश्माइलियों और मिद्यानियों को बेच दिया। अब इश्माइली मिद्यानियों से अलग लोग थे। इश्माइल अब्राहम का बेटा था, जैसा कि मिद्यान था, लेकिन इश्माइल की मां हाजीरा थी, जबकि मिद्यानियों की मां केतूरा थी। शायद इश्माइली पहले से ही अरब के क्षेत्र में रहने वाले सभी सेमिटिक लोगों के लिए एक सामान्य शब्द बन गए थे, और मिद्यानियों की पहचान अधिक विशिष्ट और सटीक थी, लेकिन हम निश्चित नहीं हैं। किसी भी मामले में अंतिम पद में हम देखते हैं कि यूसुफ मिस्र पहुंचता है और उसे मिस्र के एक बहुत ही उच्च सरकारी अधिकारी पोतीपर को बेच दिया जाता है। पोतीपर एक बहुत ही आम मिस्री नाम है, और यह कई राजवंशों के मिस्र के स्मारकों पर पाया जाता है। पेट पारा के रूप में लिखे जाने पर इसका सीधा सा अर्थ है रा को समर्पित, या रा को एक उपहार। रा मिस्र के सूर्य देवता थे। अब इस बात पर अक्सर बहस होती है कि पोतीपर ने फिरौन के लिए क्या पद संभाला था, लेकिन यह निश्चित रूप से सेना से जुड़ा हुआ था।
क्या वह महल के रक्षक का कप्तान था, या फिरौन की सभी सेनाओं का प्रभारी था, या फिरौन का मुख्य अंगरक्षक था, यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन वह संभव तो वैसे भी फिलहाल मित्र का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था।
आइए अध्याय 38 पर चलते हैं, जो कुछ समय के लिए यूसुफ की कहानी को बाधित करता है।
उत्पत्ति 38 पूरा पढ़ें।
कहानी अचानक कुछ समय के लिए वापस कनान में चली जाती है, और अब उस यहूदा भाई पर ध्यान केंद्रित करती है जिसका सुझाव था कि यूसुफ को गुलामी में बेच दिया जाए। इस अध्याय में हमने जो कुछ पढ़ा है उसमें से कुछ हमारे लिए अजीब है, कि बेटों ने भाइयों की विधवाओं से शादी की और इसी तरह की बातें। अभी के लिए हमें इसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसा हमने पढ़ा है, क्योंकि यह उस समय के लिए सामान्य प्रथा थी। हमारे लिए इस अध्याय का कुछ महत्व उस युग की मानसिकता और रीति रिवाजों को समझने में मदद करना है। यह तय के लोगों के लिए और आज की आदिवासी संस्कृतियों में भी बहुत महत्वपूर्ण था कि पारिवारिक रक्तवंश आगे बढ़े। हम कुछ मिनटों में उस पर वापस आएंगे। सबसे पहले मैं यहूदा पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, क्योंकि यहूदा से ही यहूदी लोग और अंततः मसीहा यीशु आएंगे। अर्थात यहूदा अब वाचा के वादे की निरंतर श्रृंखला के रूप में मशाल को आगे बढ़ाएगा, जो यहूदा के परदादा अब्राहम से शुरू हुई थी। यहूदा याकूब का चौथा पुत्र था और वह याकूब की दो वैध पत्नियों में से एक लियाह का पुत्र था। याकूब के पहले चार पुत्र लियाह से ही पैदा हुए थे। यह जानने की कोशिश करते हुए कि पिछले अध्याय में यहूदा का इतना प्रमुखता से उल्लेख क्यों किया गया था, क्योंकि उसने यूसुफ को बेचा था और अब इस अध्याय में उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जिसने सोचा था कि यह एक वेश्या के साथ सो रहा है, जबकि वास्तव में यह उसकी विधवा बहू थी। हमें इसराइल के परिवार याकूब के वंश की स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह पूरी तरह से संभव है और संभावित है कि यहूदा ने अपने भाई या बेहतर सौतेले भाई यूसुफ को प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा था। याद रखें, यहूदा लिया से पैदा हुआ था और यूसुफ राहेल से पैदा हुआ था। प्रतिद्वंद्वी क्यों? क्योंकि यहूदा ने खुद को अब ज्येष्ठ पुत्र आशीर्वाद और उसके साथ मिलने वाली सारी संपत्ति और अधिकार के हकदार के रूप में देखा होगा। उसने ऐसा क्यों सोचा होगा? जैसा कि हम बाद में देखेंगे, याकूब ने फैसला किया था कि रूबेन, भले ही यह याकूब का ज्येष्ठ पुत्र था, को यह नहीं मिलेगा। पहिलौठों का आशीर्वाद, क्योंकि रूबेन ने याकूब की रखेल बिला के साथ संबंध बनाए थे और शिमोन और लेवी, जो कि अगले दो थे, को भी पहिलौठों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अयोग्य माना गया, जिसे रूबेन ने खो दिया, क्योंकि वे दो लोग थे जिन्होंने शेखेम के पुरुषों पर हमला किया था और अपनी बहन दीना के कुकर्म का बदला लेने के लिए उन्हें मार डाला था।
इसीलिए यह स्वाभाविक रूप से प्रतीत होता है कि यहूदा, जो कि चौथे नंबर पर था, ज्येष्ठ पुत्र के आशीर्वाद का उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन यूसुफ को राजसी अंगरखा दिया जाना और उसके पिता द्वारा खुले तौर पर उसका पक्ष लिया जाना यहूदा के मन में यह संकेत देता है कि याकूब अपने पहले 10 बेटों, जिसमें यहूदा भी शामिल था, को दरकिनार करके यूसुफ को कबीले पर सभी अधिकार और अधिकार देने का फैसला कर चुका था, या शायद पहले ही कर चुका था। यही जाहिर है यहूदा के साथ अच्छा नहीं होता। अब यहां इस सब की विडंबना है, सत्ता के लिए यह कुश्ती, जिससे किशोर यूसुफ पूरी तरह से अनजान था, यहूदा और यूसुफ के बीच प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत थी, या इससे भी बेहतर, उनके वंशजों के बीच, क्योंकि ये दो भाई उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अंततः इज़राइल के दो प्रमुख कबीले बनेंगे, यहूदा और एप्रेम। आप में से कुछ शायद कह रहे होंगे, एक मिनट रुकिए, मुझे लगा कि हम यहूदा और यूसुफ के बारे में बात कर रहे थे, एप्रेम यहाँ कैसे आ गया? जैसा कि हम कुछ अध्यायों में देखेंगे, यूसुफ का मिस में जन्मा बेटा एप्रेम, यानी यूसुफ की मिख की पत्नी से पैदा हुआ, प्रभावी रूप से इसराइल के कबीले के रूप में यूसुफ की जगह लेगा। वास्तव में याकूब ने रूबेन की जगह लेने के उद्देश्य से एप्रेम और उसके बड़े भाई मनश्शे को यूसुफ से अलग कर दिया, और उसके सदियों बाद यहूदा और एप्रेम दो इसराइली राज्य बन गए, जो दाऊद और सुलेमान के अधीन इसराइल राष्ट्र के विभाजन के बाद बनाए गए थे, और यहूदा और एप्रेम के वंशज एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करते रहे, जब तक कि अश्शूर ने अंततः एप्रेम के उत्तरी राज्य पर विजय प्राप्त नहीं कर ली और इसराइल के 10 गोत्रों को, जो एप्रेम का गठन करते थे, एशिया के सुदूर क्षेत्रों में बिखेर गए। इसलिए जब से यूसुफ एक युवा व्यक्ति था, तब से लेकर आज तक यहूदा के वंशज और यूसुफ के वंशज एप्रेम के माध्यम से एक दूसरे के साथ मतभेद रखते हैं। यह दिलचस्प है कि यहेजकेल 37 की भविष्यवाणी में एक समय की भविष्यवाणी की गई है कि इसराइल एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में नहीं रहेगा, फिर भी अपनी शुरुआत की भूमि में एक राष्ट्र बन जाएगा। इसके अलावा यहूदा और एप्रेम वापस भूमि पर आएंगे और एक राजा के अधीन शासन करेंगे। राजा दाऊद के वंशज हमेशा के लिए यहूदा 1948 में मध्य पूर्व में वापस आया और इसराइल राष्ट्र का पुनर्गठन उसी स्थान पर किया जहां यह लगभग 2000 साल पहले नष्ट होने से पहले था। लेकिन एप्रेम का क्या?
खैर, वे यूसुफ जनजातियां हाल ही में चर्चा में रही हैं। हम पारंपरिक रूप से ए प्रेम की जनजातियों का संदर्भ देते समय इसराइल की 10 खोई हुई जनजातियों की बात करते हैं। एप्रैम इसराइल में वापस नहीं आया था, लेकिन यहूदा वापस आ गया था। खैर, अब कई सालों से एशिया और भारत में फैले लोगों की बड़ी जनजातियां दावा कर रही हैं कि वे उन खोई हुई जनजातियों में से कुछ हैं। लगभग 20 साल की जांच के बाद इसराइल के यहूदी धार्मिक नेतृत्व ने निर्धारित किया है कि वास्तव में वे एप्रैम हैं, और उन्होंने इस तथ्य के बारे में इसराइल सरकार को आश्वस्त किया है। इसलिए मार्च 2005 तक एप्रैम की इन जनजातियों में से कुछ को इसराइल में प्रवास करने के लिए आमंत्रित किया गया है। यहेजकेल 37 की भविष्यवाणी पूरी हो रही है, लेकिन अभी भी एक समस्या है। आधुनिक यहूदी जो यहूदी धर्म का पालन करते हैं, वह इन विभिन्न एप्रैमाइट जनजातियों के तोरह में अपने विश्वासों का पालन करने के तरीके से अलग 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 डिग्री तक है। ठीक वैसे ही जैसे यह आदमी यहूदा और आदमी यूसुफ से शुरू हुआ था, और जैसा कि यहूदा द्वारा बेचे जाने के बाद से हुआ है।
यूसुफ को गुलामी में डाल दिया गया और वह मिस्र में चला गया। यहूदा और यूसुफ जनजातियां एप्रैम अभी भी एक दूसरे से असहमत हैं। यहूदा यहूदियों ने एप्रैम से कहा है कि उन्हें यहूदी परंपराओं को अपनाना चाहिए और मूल रूप से यहूदी धर्म अपनाना चाहिए ताकि वे इसराइल वापस आ सकें। एप्रैम के वे लोग जो इसराइल आने के लिए बेताब हैं सहमत हो गए हैं, लेकिन आप शर्त लगा सकते हैं कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
मुझे संदेह है कि जैसे जैसे एप्रैम की वापसी तीव्र होगी, वैसे वैसे यहूदा के तरीकों को पूरी तरह अपनाने के प्रति उनका प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा।
चलो आज रात यहीं रुकें।